छाया हीलिंग में स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर निधि श्रीवास्तव एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आज का हमारा विषय है स्ट्रेस या तनाव और इसका मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट या तनाव प्रबंधन। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तनाव प्रबंधन होता क्या है, तनाव कैसे उत्पन्न होता है, तनाव कहते किसको है और इसको कैसे जज किया जा सके या इसे पहचाना कैसे जाए, इन्हीं सब बातों की चर्चा आज हम करते हैं। प्रायः रोज ही हमारी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलों का सामना आए दिन करना पड़ता है। कई बार ऐसे हालात आते हैं जिन्हें हम चाह कर भी संभाल नहीं पाते, तो कई बार उनसे निपटते हुए हमें भारी टेंशन का सामना भी करना पड़ता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे तनाव को आदि हो चुके हैं, जो डेली लाइफ का एक हिस्सा उनके हो जाती। कई बार ऐसा होता है कि तनाव झेलते झेलते इंसान इतना आदि हो चुका होता है कि उन्हें महसूस ही नहीं होता कि उन्हें तनाव है और ये तनाव के आदि हो जाते हैं। ऐसे तनाव को यूस्ट्रेस कहा जाता है। अगर देखा जाए तो ये तनाव आपकी परफॉर्मेंस और काम की क्षमता पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता होता है कि वो तनाव में है क्योंकि वो हैबिचुएटेड है। लेकिन नुकसान ये है कि इस तनाव के कारण उसको पता ना होने के बावजूद उसके काम पर, उसकी ज़िंदगी पर वो असर कर रहा होता है नकारात्मक रूप से। तो आज की इस चर्चा में हम यही बात करेंगे कि तनाव या टेंशन क्या है, तनाव के लक्षण कैसे हम जज कैसे करें, कौन से लक्षण होते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि तनाव है, ज़्यादा टेंशन लेने से नुकसान क्या हो सकता है और टेंशन से बचने के उपाय क्या किए जा सकते हैं। कुछ सरल स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स के बारे में मैं आपको आज बताऊँगी। तो ये सब की चर्चा करते हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये टेंशन या स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस या तनाव ये एक सामान्य चीज़ होती है। तनाव का होना कोई ऐसा ये नहीं है कि तनाव बिल्कुल भी नहीं होता है, शून्य की स्थिति कभी नहीं होती। तनाव होता है, थोड़ा सा तनाव, सामान्य तनाव होना सामान्य बात है। ये तब महसूस होता है जब जैसे किसी स्थिति से हम निपटना चाह रहे हैं और निपट नहीं पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है, तो टेंशन होने लगती है। टेंशन होने पे क्या होता है, एड्रेनलाइन जो हमारे बॉडी का एक हार्मोन होता है वो हमारे पूरे शरीर में दौड़ने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मानसिक और शारीरिक चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है, सनसनी महसूस होती है और कई बार पूरे शरीर के रोएं खड़े हो जाते हैं। तो एक नॉर्मल तनाव होता है और एक उस तनाव से जब हमारे शरीर पे कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है तो उसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं और वो कई बार बहुत ख़तरनाक स्थिति तक पहुंच जाता है। तो आखिरकार ये तनाव जो कि एक सामान्य सी चीज़ है कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों की ज़िंदगी में तनाव नहीं होता था। जैसे सामान्य तौर पे आप सुनते होंगे आजकल ज़िंदगी में बड़ा तनाव है, हर कोई भागम भाग की ज़िंदगी में अपने को तनाव में पाता है और ये सब लाइफस्टाइल की वजह से। तो तनाव ऐसा नहीं कोई नई चीज़ है या हमारे पुराने समय में या पुराने ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे उनके साथ तनाव नहीं होता, लेकिन वो करो या मरो की स्थिति को अपना कर आसानी से इससे पार पा जाते थे। आज हमारे जीवन में तनाव की मात्रा, उनकी आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब स्ट्रेस देने वाले हार्मोन जैसे एड्रेनलिन और कार्टिसोल का प्रोड्यूस होना उस वक्त और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब हमें उनकी ज़रूरत ना हो। तो ये जब ज़्यादा बनने लगते हैं तो वो एक ख़तरनाक स्थिति तक हमें पहुंचा सकते हैं। अगर तनाव या स्ट्रेस लंबे वक्त तक रहे तो ये हमारे इम्यून सिस्टम और हार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा बाहरी बीमारियों से निपटने की हमारी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है। इसका मतलब साफ है, तनाव उस वक्त और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब आपको हर 5 मिनट में डू आर डाई की स्थिति में जाना पड़े। क्या इस स्थिति से निपटने का कोई आसान और स्वस्थ तरीका हो सकता है, क्या ये काम हम कर सकते हैं? अगर हमें ये पता लगे कि जो हम महसूस कर रहे हैं उसका कारण क्या है, हमें जो फील हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है, तो हम मुश्किलों से और अधिक स्मार्ट तरीके से निपट सकते हैं। समस्याओं से निजात पाना हमारे लिए मतलब आसान हो सकता है, क्योंकि हमें पता होता है, जब पता नहीं होता है तो ज़्यादा परेशानी होती है। तो ज़्यादा तनाव लेने से क्या नुकसान हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, हमारे हार्ट को नुकसान पहुंच सकता है, हम गंभीर बीमारियों को आमंत्रित दे रहे होते हैं, उसका ख़तरा बढ़ जाता है, उम्र कम हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी 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 दिक्कतें शरीर से संबंधित, जीवन से संबंधित शुरू हो जाती है। तो तनाव को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर तनाव को हम नहीं समझते तो कई गंभीर मानसिक समस्याएँ हो सकती हैं। हमारे भारत देश में हर 4 में से एक इंसान हर साल टेंशन की समस्या की चपेट में आ जाता है। यही वो कारण है जिसकी वजह से हमें कई बार देखते होंगे कि लोग काम करते हुए लंबे समय तक अपने काम को फोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान केंद्र मतलब कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो लगातार स्ट्रेस में होते हैं। अगर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लंबे समय तक अनदेखा किया जाए तो ये गंभीर समस्या में परिवर्तित हो जाता है। हमारे देश में टेंशन डिप्रेशन का इलाज करवाने वाले मरीजों में से 3/4 महिलाएं हैं। ये एक अलार्मिंग स्थिति है कि जितने पेशेंट हैं उसमें से 3/4 महिलाएं हैं। जब महिलाएं इस तरह से डिप्रेशन और तनाव में रहेंगी तो घर परिवार पर उसका असर पड़ता है, फैमिली डिस्ट्रैक्ट होती है, फैमिली का जो है टोटल फैमिली की हेल्थ उससे इफेक्टेड होती है। तो जो 3/4 लोग टेंशन और डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर लेते हैं उनमें पुरुष भी हैं। डिप्रेशन और टेंशन की ही जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए जितनी सुसाइडल केस हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं डिप्रेशन और टेंशन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार फैक्टर होता है। इसके लिए इलाज के महत्व को समझना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत है और इसको गंभीरतापूर्वक लेने की ज़रूरत है। टेंशन होने पर उसके बारे में बात करना किसी कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये समझना होगा कि ये कोई बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है। इसके लिए इस पर बात करना, ये इसके लिए भी हिम्मत चाहिए। तो जो बात कर रहा है वो कमज़ोर नहीं है, वो हिम्मती है, क्योंकि उसको अपनी और अपने परिवार की चिंता है। आखिर ये तनाव होता क्यों है? लोग कहते हैं आजकल बहुत है, पहले इतना नहीं था, लाइफ स्टाइल डेफिनेटली लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, पर इस जो लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आया है तो तनाव किस तरह से, किन वजहों से हो रहा है, ख़ास तौर पे कौन से वे फैक्टर हैं जो हमारे जीवन में तनाव क्रिएट कर रहे हैं? इसमें काम है, बेरोजगारी है, पैसा है, अलगाव और कुछ अन्य कारण जैसे घर छोड़ जाता है, कहीं घर के कोई मेंबर घर छोड़ जाए या पार्टनर से ब्रेकअप हो जाए, नौकरी में बदलाव होना, बच्चों का घर छोड़ना, घर छोड़ के भाग जाना, मूड स्वास्थ्य, आपका खुद का स्वास्थ्य सही नहीं है या फैमिली में किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है, मूड डिसऑर्डर भी हो जाता है इन सब सिचुएशन को देख के, मौसम या अपने किसी के साथी की निधन हो जाए, डेथ हो जाए, डिवोर्स या परिवार का टूट जाना, नशाखोरी, कोई ड्रग एडिक्शन वाली चीज़ है फैमिली में किसी मेंबर के अंदर, वो भी एक है, बुरी आदतों का शिकार होना, हिंसा या कोई कर जो कहते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होता है तब भी डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें स्ट्रेस शुरू हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए जीवन में उतार चढ़ाव आना एक सामान्य बात होती है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये समस्या बनी रहती है, ज़िंदगी में सब कुछ समस्या के तौर पे चलती रहती है तो क्या होता है, बाकी चीज़ें भी उससे प्रभावित होती हैं और लाइफ ख़राब हो जाती है। ऐसे में तनाव जो है वो शुरू हो जाता है, और आप हमेशा तनाव को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो वो आपको कमज़ोर कर देगा। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि टेंशन अगर हो रही है तो उसको बहुत जल्दी से उसको रिमूव करना है, ना कि उसको अपने ऊपर हावी कर होने देना है। तनाव होने पर हमेशा चीज़ों को सकारात्मक तरीके से देखने की कोशिश करिए। कुछ मामलों में हो सकता है आपको फ्रेश स्टार्ट की भी ज़रूरत पड़े, नए सिरे से सब चीज़ को समझने की ज़रूरत पड़े, नए सिरे से आपके अपने थॉट प्रोसेस को रिवाइव करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर आप लगातार नौकरी, पार्टनर, घर और इन सब चीज़ों को, हालातों को देख देख के बार बार अपने आप को उसी स्थिति में ढकेलते रहेंगे या बार बार बदलते रहेंगे, तो आप कभी भी स्ट्रेस से उबर नहीं सकते हैं। तो जब भी आपको अलार्मिंग सिचुएशन दिखाई दे, जैसे अगर आपको तनाव इतना ज़्यादा है कि संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। इसलिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि तनाव होने से पहले के वे कौन से लक्षण हैं जिन्हें आप थोड़ी देर में होने वाले तनाव से पहले ही निपट लें, जिससे वो ज़्यादा विकराल रूप धारण ना करें। तो कौन कौन से लक्षण होते हैं जो प्रायः एक तरह से शुरुआती दौर में ही हमें दिख जाते हैं, जैसे सामान्य से ज़्यादा या कम भोजन करना। बहुत ज़्यादा भोजन करना भी स्ट्रेस का लक्षण होता है, बहुत कम भोजन करना भी स्ट्रेस का लक्षण होता है। तेज़ी से मूड का बदलना, मूड स्विंग होना, आत्मसम्मान में कमी आना, हर वक्त टेंशन या बेचैनी महसूस करना, ज़्यादा या कम सोना, कमज़ोर याददाश्त या भूलने की समस्या, ज़रूरत से ज़्यादा शराब या ड्रग्स लेना, कोई भी नशे की चीज़ों को लेना, ज़रूरत से ज़्यादा थकान या ऊर्जा में कमी होना, परिवार और दोस्तों से दूर रहना, चरित्र से दूर हो जाना, मतलब आप जो है इस तरह के लक्षण जब देखें तो आप अलर्ट हो जाइए। ध्यान केंद्रित ना कर पाना, काम में संघर्ष करना, आप जब भी कोई काम करते हैं तो उसको आपको मशक्क़त के साथ करनी पड़ रही है, मतलब आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप फोकस नहीं हो पा रहे हैं, आप जो है उसको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बोझ सा हो गया है, उन चीज़ों में भी मन ना लगना जो आपको पहले पसंद थी, पहले जिन चीज़ों को आप एंजॉय कर रहे थे, अगर आज की डेट में वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही हैं तो ये भी एक लक्षण हो सकता है तनाव का। विचित्र अनुभव होना, उन चीज़ों को दिखना, उन चीज़ों का दिखना जो वहाँ पर नहीं है, मतलब एक तरह से हेलुसिनेशन की स्थिति, हल्की फुल्की कभी पता लग रहा है कुछ और है, रखी कोई और चीज़ है, लग रहा है कुछ और है, आपको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक सिम्टम ऐसा है जो आपको अलार्म की तरह से ध्यान दिला रही है, ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे को, आप फोकस करिए और समझिए कि आपको अब दिक्कत आने वाले समय में हो सकती है, तो आप इसको पहले से ही दूर करने के लिए आप अलर्ट हो जाइए। कुछ शारीरिक लक्षण भी होते हैं, जैसे सिर दर्द, कब्ज, किसी खास अंग या शरीर में दर्द होना, ये सब टेंशन के लक्षण हैं। अब जब हम सभी जानते हैं कि हम किसी से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो उससे बात करना हमेशा अच्छा होता है। हम लोगों में से कुछ के लिए सोशल मीडिया इसका सबसे अच्छा माध्यम है, लेकिन रिसर्च बताती है सोशल मीडिया ही हम लोगों में से कई की ज़िंदगी को बड़ी मुसीबत में डाल देता है। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पूरी तरह से गलत है, ख़राब है, फ़ायदेमंद नहीं है, या सोशल मीडिया पूरी तरह से अच्छा है। अगर आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो वो सही है, नहीं तो कई बार वो दुख तकलीफ़ का कारण भी बन जाता है। तो अपनी बात को शेयर करना, अपनों के बीच में बैठ के बात करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक पुरानी कहावत है ना कि दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन यकीन मानिए ये बात सच है। ये लोगों को बताने के लिए नहीं है, ना ही ये साबित करने के लिए है कि आप ज़रूरत में हैं और किस दौर से गुजर रहे हैं, बल्कि ये उनसे समझने के लिए कि अगर वह उस तकलीफ़ में होते तो क्या करते। आई बात समझ में? तो हम किसी से अगर अपनी तकलीफ़ बांटते हैं तो दर्द कम क्यों होता है? इसलिए होता है कि सामने वाले की ज़िंदगी में भी बहुत सारे अनुभव होते हैं, तो जब हम बातचीत करते हैं, अपनी दुख तकलीफ़ शेयर करते हैं, तो जो दूसरे के एक्सपीरियंसेस हैं उसको आप सुनते हैं, समझते हैं, लेते हैं, तो कई बार हमें अपनी परेशानियों का भी सॉल्यूशन मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं दर्द बांटने से कम होता है। तो जब हम टेंशन में हो तो सबसे आसान सा उपाय ये है कि हमको सबसे पहले अपने को किसी ऐसे व्यक्ति, किसी से भी तो नहीं लेकिन हाँ किसी अपने से बात करें, उससे अपनी बात को शेयर करें। जब आप दूसरे से बात करेंगे तो आपको रास्ता भी कई बार बातचीत के ज़रिए दिख जाता है और हमारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इसलिए खुलकर संवाद करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी किसी से बात करना कौन सी बड़ी बात है, किसी से बात करना कपड़े धोना, कार धोना या कंप्यूटर पर गेम खेलने जैसा ही तो छोटा काम है। इसलिए ईमानदारी से बात रखिए और दोस्तों को हर वो बात बता दीजिए जो आपको परेशान कर रही है। दोस्त, एक सच्चे दोस्त से बातचीत करने से ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याओं का निराकरण होता है। और घबराना नहीं चाहिए, कोई भी मुश्किल परेशानी है उस पर बात किया जाना चाहिए, इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, समस्या के निराकरण को फोकस करना चाहिए ना कि प्रॉब्लम को। हमेशा समाधान पर बात करिए, समाधान के बारे में सोचिए ना कि समस्या पे। क्या कभी आपको जुकाम दस्त या बुखार की समस्या नहीं हुई है? अगर वो ठीक हो सकती है तो ये समस्या क्यों नहीं? इन बीमारियों के इलाज के लिए तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो फिर ठीक है। अगर आपको टेंशन भी हो गई, कोई ऐसी समस्या हो गई, तो उसके लिए भी तो डॉक्टर के पास जा सकता है, परामर्शदाता के पास जाया जा सकता है। उसमें हिचक क्यों है? बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उससे संबंधित जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, आपकी परेशानी का निराकरण हो जाएगा। और शुरुआती दौर में ही कर लेना चाहिए, किसी चीज़ को आप बिल्कुल इस स्टेज तक ना ले जाएं कि वहाँ से लौटना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाए। अगर आप वाकई टेंशन से उभरने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी स्थिति दिन ब दिन बेहतर ना होके बदतर हो रही है, तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं। मनोचिकित्सक वाकई बहुत धैर्य से मरीज की बात सुनते हैं और वह आपकी समस्या को औरों से बेहतर समझते हैं। उनके सामने बात रखने से वह न सिर्फ आपका इलाज सही ढंग से करेंगे बल्कि आपकी ज़िंदगी को एक नई राह भी दिखा सकते हैं। तो टेंशन डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी उतनी ही आम बीमारी है जितनी कि जुकाम या बुखार। अगर आप उनके इलाज के लिए डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो टेंशन के इलाज के लिए भी जाइए, बात करिए और अपने जितनी भी इस तरह की समस्याएं जीवन में आती हैं, मानसिक तौर पे आप उसको लेके परेशान होते हैं, उसके लिए आप संपर्क करिए, अपने जीवन को सुंदर बनाइए और एक खुशहाल ज़िंदगी जब आप जिएंगे तो आपसे के साथ जुड़े हुए सभी लोग खुशहाल बनेंगे। कहते हैं ना कि अगर हम खुश तो दुनिया खुश, नहीं तो इर्द गिर्द सब कुछ वैसे ही हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि तनाव क्या है और तनाव का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, अपने जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाइए। आशा है आपको इन सब छोटी छोटी जो बातें बताई मैंने उससे आपको लाभ होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक बार फिर आपसे विदा लेती हूँ, फिर पुनः आपसे मिलूंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।